वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अन्वय का कॉलेज में अलग ही रुतबा था। उसके लुक्स और सख्त रौबदार व्यक्तित्व, किलर एटीट्यूड के कारण न सिर्फ छात्र बल्कि महिला व्याख्याताएं भी उस पर फिदा हो गई थीं। पर अन्वय का व्यवहार उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ था, जिसके कारण चाहकर भी कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और ना ही अन्वय स्वयं किसी की ओर निगाह उठाकर देखता था। इसके कारण वे महिलाएं बस उसे देखकर आहें भरकर रह जाती थीं। आनिया का काम भी अच्छा चल रहा था। उसने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया था। सोनिया उसके काम से बहुत खुश थी। वास्तव में उसे दो सहायक मिले थे, पर आनिया दूसरी सहायक, जिसका नाम नीलिमा था, उससे हर मामले में बेहतर थी। इस कारण सोनिया आनिया से ज्यादा घनिष्ठ थी। आनिया के स्पष्ट स्वभाव के कारण दोनों की दोस्ती हो गई थी। आनिया उसके साथ ही लंच करती थी और बातें भी करती थी। सिर्फ उसी के साथ नहीं, आनिया के चुलबुले स्वभाव ने ऑफिस में सबका दिल जीत लिया था। वह जल्दी ही अपना काम खत्म कर लेती, फिर यहाँ से वहाँ घूमती रहती। कभी किसी के पास जाकर बैठकर बातें करने लगती तो कभी किसी के काम में मदद कर देती। किसी से कोई बैर नहीं था उसे। वह स्वयं भी खुश रहती और सबको हंसाती रहती थी। यहाँ तक कि नीलिमा और उसकी सहेली रायमा की भी मदद करती थी। रायमा को तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर नीलिमा आनिया से जलने लगी थी। वो पहले से काम कर रही थी, आनिया नहीं थी, फिर भी सब उसकी और उसके काम की तारीफ करते थे। आनिया उसे कहीं अधिक सुंदर भी थी। ये एक और कारण था कि वो आनिया को पसंद नहीं करती थी। विजय सक्सेना भी आनिया पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहता था, पर आनिया अन्वय की बातों को ध्यान में रखते हुए सावधान रहती थी। ना उसे कुछ लेती थी, ना ही उसके केबिन में जाती थी। सोनिया विजय के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वो कभी भी किसी काम से आनिया को उनके केबिन में नहीं भेजती थी। ये काम अक्सर नीलिमा करती थी, जिससे वो और चिढ़ जाती थी कि आनिया महारानी की तरह बैठकर आदेश देती है और काम उसे करने पड़ते हैं। अक्सर श्री सक्सेना आनिया को अपने पास बुलाते थे, पर आनिया उन्हें कुछ भी गलत करने का मौका नहीं देती थी। उनसे दूर से ही बात करती और जल्दी से बाहर निकल जाती थी। इससे विजय भी अब उसके व्यवहार से कुछ चिढ़ने लगा था, पर कुछ कह भी नहीं सकता था उसे। ऑफिस में सब आनिया के स्वभाव के कारण उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उससे अच्छे खासे प्रभावित हो गए थे। उसकी बहुत अच्छी छवि थी सबकी नज़रों में। उसके आने से वहाँ का माहौल खुशनुमा रहने लगा था, जैसे बेजान शरीर में जान फूंकती हो किसी ने। बातों हंसी मजाक के बीच काम में कोई कमी भी नहीं रहती थी। आनिया को एक महीना हो गया था काम करते हुए। दोनों ने घर के काम को बांट रखा था। अन्वय उसे लेने और छोड़ने आता था। दिन भर व्यस्त रहने के बाद शाम को अन्वय से मिलते ही वह उसे सारी दिन की बात बताती थी और अन्वय खामोशी से उसकी हर बात सुनता था। रात को आनिया अक्सर थकान के कारण टीवी देखते देखते सो जाती थी। दोनों के बीच जो रिश्ता था वो समय के साथ और गहरा होता जा रहा था। जहाँ आनिया अनजान थी, वहीं अन्वय अपने प्रति उसके बढ़ते लगाव को देखकर परेशान था और बेबस तथा मजबूर था कि वो उसे चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। इतनी तकलीफ सहने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी में अब जाकर अन्वय के पास रहकर कुछ सुकून के पल पाए थे और अन्वय उससे उसकी ये खुशी छीनना नहीं चाहता था। आनिया लंच ब्रेक में अक्सर सिमरन और राहुल से मिल लेती थी। फोन पर भी बात हो जाती थी। उनकी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। अन्वय के अलावा न किसी से मिलता था, न ही बात करना पसंद करता था, जबकि आनिया सोनिया और सिमरन राहुल तीनों से खुलकर बात करती थी। उन्हें अन्वय के बारे में भी बताती रहती थी और स्वयं भी उसे परेशान करती रहती थी। आनिया अब ठीक हो गई थी, इसलिए उसकी दवा बंद हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज भी आनिया ऑफिस से आई और फ्रेश होकर टीवी चलाकर बैठ गई। आज अन्वय को डिनर बनाना था, इसलिए वो कपड़े बदलकर किचन में चला गया। टीवी की आवाज़ तेज थी, इसलिए अन्वय के कानों तक उसकी आवाज़ साफ साफ पहुंच रही थी। अब तो उसकी आदत हो गई थी। जब भी खाना बनाने की बारी अन्वय की होती तो आनिया बैठकर टीवी में सीरियल देखती थी, या अगर उसकी बारी होती तो अन्वय उपन्यास पढ़ता और वो फ़ोन में गाने चलाकर उन्हें गुनगुनाते हुए काम करती। अन्वय उपन्यास पढ़ता था, पर आनिया की मीठी आवाज़ में गानों का भी मज़ा लेता था। कुछ देर बाद उन्होंने डिनर किया। फिर आनिया आलसीपन से बेड पर आ बैठी और टीवी पर नजरें गड़ाई बैठ गई। वह बहुत गंभीर लग रही थी। अन्वय किचन का काम निपटाकर बाहर आया, तब रात के 9 बजने वाले थे। आज भारत का पाकिस्तान से मैच था। कहानी की मांग थी गंभीरता से नाले, जो कॉलेज के कारण अन्वय ने मिस कर दिया था और अभी उसका रिपीट टेलीकास्ट आने वाला था। उसने समय देखा तो 9 बजने में बस 7 मिनट बाकी थे। वहीं आनिया के सीरियल का आज महाएपिसोड आ रहा था, जो 2 घंटे चलने वाला था। 2 सीरियल साथ में दिखाए जाने वाले थे और दोनों की कहानी ऐसे मोड़ पर थी कि आनिया एक पल के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा रही थी। रिमोट को उसने कसकर अपने हाथ में पकड़ रखा था। अन्वय समय देखकर आनिया के पास आकर खड़ा हो गया और उसका नाम पुकारा तो आनिया ने टीवी देखते हुए ही हूँ कहा, पर अपनी नजरें नहीं हटाई। अन्वय ने फिर कहा, आनिया आज मुझे टीवी देखना है। उसका इतना कहना था कि आनिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। उसने अन्वय की ओर निगाहें घुमाते हुए हैरानी से कहा,
क्यों? आज मैं नहीं देखने दूंगी तुम्हें टीवी। देख नहीं रहे? मेरे शो का महा एपिसोड आ रहा है और मैं इसे मिस नहीं कर सकती। मेरा मैच शुरू होने वाला है। दोपहर में भी नहीं देख पाया था, पर अभी मुझे देखना है। तुम तो रोज ही देखती हो, मैं तो तुम्हें नहीं रोकता। आज मुझे देखना है तो रिमोट दो मुझे। तुम अपना नाटक कल आराम से देख लेना। वैसे भी कल रविवार है, तो सारा दिन तुम्हें यही करना है। जी नहीं, कल मुझे और भी बहुत से काम है, इसलिए मैं अभी ही सीरियल देखूंगी। तुम मैच फोन में देख लो, क्योंकि मैं रिमोट नहीं देने वाली तुम्हें, आन्या ने जिद पर अड़ते हुए कहा। इससे अन्वय को गुस्सा आने लगा और उसने चिढ़कर कहा, आन्या बेकार की जिद मत करो। तुम्हें देखना है तो जाकर अपना नाटक फोन में देखो, मुझे टीवी पर ही मैच देखना है, इसलिए चुपचाप रिमोट मुझे दे दो। अन्वय ने इतना कहकर रिमोट लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो आन्या झट से पीछे सरक गई और आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, मैं क्यों दूंगी तुम्हें रिमोट? फोन में वो मजा नहीं आता, इसलिए मैं टीवी में ही देखूंगी। अन्वय ने पहले उसे घूरा, फिर और आगे बढ़कर उसके हाथ से रिमोट लेने की कोशिश करने लगा कि आन्या झट से बेड पर खड़ी हो गई। अन्वय भला क्यों पीछे रहता, वो भी बेड पर चढ़ गया और आन्या की ओर बढ़ा तो वो जल्दी से नीचे कूदने लगी, पर अन्वय ने उसकी बाह पकड़कर उसे पीछे खींच लिया, जिससे आन्या धम से बेड पर गिर गई। अन्वय भी संभल ना सका और उसके ऊपर ही जा गिरा। आन्या ने डर और घबराहट के कारण अपनी आंखें मूंद ली थी। वहीं अन्वय की निगाहें आन्या के घबराए हुए चेहरे पर टिक गईं, जो घबराने के कारण और भी प्यारा और मासूम लग रहा था। कुछ सेकंड बाद आन्या ने धीरे से अपनी पलकें उठाई तो उसकी निगाहें अन्वय की गहरी काली आंखों से टकरा गईं। एक बार फिर आन्या उसकी गहरी काली आंखों में खोसी गई और एकटक उसकी आंखों में झांकने लगी। दोनों की धड़कनें इस वक्त समान लय से तेजी से चल रही थीं। दोनों के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे। उनके लबों के बीच एक एक इंच भर का फासला था। नाक एक दूसरे से लगभग टकरा रही थी। एक अजीब सा जाना पहचाना सुखद एहसास दोनों को छूकर गुजर गया।
अन्वय इससे होश में लौटा और जल्दी से उसके ऊपर से हटते हुए बेड से नीचे जा खड़ा हुआ। उसकी हटने से आन्या भी होश में लौट आई, पर वो एहसास अब भी उसे महसूस हो रहा था। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए उठकर बैठ गई। कुछ पल दोनों अपनी चढ़ती उतरती धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश करते रहे। खुद को संयमित करने के बाद दोनों ने एक साथ ही कहा, सॉरी। एक बार फिर उनकी निगाहें एक दूसरे पर चली गईं। अन्वय ने अगले ही पल उस पर से नज़र हटाते हुए कहा, सॉरी, वो गलती से हो गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है तुम कभी गलती से भी मेरे साथ कुछ गलत करना तो क्या, मेरे बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकते। आन्या के लबों पर इस वक्त मोहिनी मुस्कान फैली हुई थी। उसकी बात सुनकर अन्वय की निगाहें एक बार फिर उसकी ओर घूम गईं और वो हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम न कभी मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हो, ना ही मेरे बारे में कुछ गलत सोच सकते हो। मुझे तुम पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास है, आन्या ने लबों पर मुस्कान सजाए उसे देखते हुए कहा। क्यों? मैं देख रहा हूँ हमारी पहली मुलाकात से तुम मुझ पर आंख बंद करके विश्वास कर रही हो। मैं एक लड़का हूँ और तुम एक लड़की, तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूँ मैं। कभी तुम्हें ये सोचकर डर नहीं लगता? मुझे तुम्हारे साथ रहकर अलग सा सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे आसपास हो तो मैं महफूज हूँ। तुम्हारी मौजूदगी ही मुझे हर डर से आज़ाद करती है, फिर भला मैं तुमसे कैसे डर सकती हूँ? अन्वय के सवाल पर आन्या ने मुस्कुराकर ही जवाब दिया, जिसे सुनकर अन्वय ने फिर से सवाल किया, ऐसा क्यों है? मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो तुम? ये तो मुझे अपने दिल से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वही बता सकता है कि तुम्हारे आसपास रहने पर वो इतना रिलैक्स क्यों हो जाता है। क्यों ये जानते हुए कि तुम एक लड़के हो और कुछ वक्त पहले तक मेरे लिए एक अजनबी थे, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों महसूस करता है जैसे तुमसे पुराना कोई बहुत गहरा रिश्ता है, जैसे वो तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता है और जानता है कि तुम हो तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये विश्वास क्यों, ये मुझे नहीं पता। बस पहली मुलाकात से तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अपने से लगने वाले अजनबी थे, जिसके साथ मैं सहज थी, और तुमने मेरे विश्वास को सही साबित किया है, आन्या ने एक बार फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। इस बार अन्वय कुछ कह नहीं पाया। जुड़ाव तो उसे भी महसूस होता था उससे हुई पहली मुलाकात से। जब उस दिन जंगल में उसे पहली बार देखा था, तब आंखों ने उसकी एक झलक देखकर ऐसा सुकून पाया था जैसे जाने कब से उसके दीदार को तरस रहे हों वे। दिल उसे देखकर ही जोरों से धड़कने लगा था, रोक नहीं पाया था खुद को उसे मुसीबत में देखकर और पहुंच गया था उसे बचाने। झरने पर छोड़ने के बाद भी उसे पल भर देखने के लालच के कारण वहां से नहीं जा सका और पेड़ के पीछे छुपकर उसे निहारने लगा। रेलवे स्टेशन पर उसे अकेला नहीं छोड़ सका, उसकी चिंता में उसे अपने घर ले गया और उसके लिए अपने भाई से अलग हो गया। उसे हर तकलीफ से बचाने की कोशिश में चाहकर भी आज तक उससे दूर नहीं जा सका। ये एहसास क्यों थे वो भी नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि आन्या वो लड़की थी जिसे देखकर उसके दिल में हलचल हुई थी और वो बस उसे रक्षा करना चाहता था, इसलिए अब उसने आगे कुछ नहीं कहा।